चलिए आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं। अक्सर जब हम किसी आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट को देखते हैं ना, तो सब कुछ कितना बेदाग और परफेक्ट लगता है। एकदम सीधी रेखाएं, हर कमरे की सटीक जगह, मतलब एक गणितीय पूर्णता होती है उसमें।
हाँ बिल्कुल, और कोई भी उस कागज को देखकर यही सोचेगा कि क्या शानदार इमारत बनने वाली है।
सही कहा। लेकिन जब हम असली कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं ना, तो नजारा एकदम अलग ही होता है।
अरे हाँ, वहाँ धूल होती है, शोर होता है और पूरी तरह से अराजकता मची होती है।
बिल्कुल, मतलब मजदूर अपने मनमाने तरीके से ईंटें रख रहे होते हैं, कोई नक्शे को पलटकर भी नहीं देख रहा है, दीवारें टेढ़ी जा रही हैं और पूरा प्रोजेक्ट एक आपदा लग रहा होता है। ब्लूप्रिंट में जो होना चाहिए और साइट पर जो वास्तव में है, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई होती है।
ऐसे बात करने वाले हैं डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ड का, यशाया की प्राचीन किताब के अध्याय 2 और 3 पर दिया गया एक क्लास सत्र। वो हमें बताता है कि ये असल में पूरी मानव जाति के इतिहास की ही कहानी है।
हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे आकर्षक पहलू है। डॉक्टर ऑसवाल्ड हजारों साल पहले लिखे गए इन प्राचीन शब्दों को उठाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वे आज की हमारी दुनिया की, मतलब हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म, हमारी राजनीति और यहाँ तक कि हमारे घरों में जमा फालतू सामान की भी बिल्कुल सटीक व्याख्या करते हैं।
बिल्कुल, उनका पूरा विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे इंसान का अपना अहंकार, खुद को सब कुछ समझने की भूल, उसे अंततः एक गहरी अर्थहीनता की तरफ ले जाती है।
तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यशाया के इन अध्यायों में शुरुआती इस भारी विरोधाभास से होती है। एक तरफ दुनिया का वो आदर्श स्वरूप है जैसा उसे होना चाहिए, और दूसरी तरफ वर्तमान की वो उथल पुथल है जिसमें हम आज जी रहे हैं।
आदर्श बनाम वास्तविकता।
हाँ, वैसे इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले स्रोत में एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र है जिसे शेयर किए बिना मैं नहीं रह सकता। अध्याय 3 और 4 के बीच का जो विभाजन है वो दरअसल गलत जगह पर है।
अच्छा, वो कैसे?
ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में जब कोई भिक्षु अपने गधे पर बैठकर इन अध्यायों को बांट रहा था, तो अचानक गधा एक गड्ढे में जा गिरा, भिक्षु की कलम खिसकी और बस वहीं से एक नया अध्याय शुरू हो गया।
अरे बापरे, ये तो सच में हास्यास्पद है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात की ओर भी इशारा करता है। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते समय अगर हम उनके मूल प्रवाह को नहीं समझेंगे, तो हम उनका असली अर्थ खो देंगे।
बिल्कुल सही बात है।
अध्याय 2 की शुरुआत एक बहुत ही भव्य दृश्य से होती है, अंत के दिनों का एक विजन जहां परमेश्वर का पर्वत सबसे ऊंचा होगा और सभी राष्ट्र, सारी दुनिया के लोग वहां सीखने के लिए आएंगे। वे कहेंगे, हमें उनके तोरा के बारे में सिखाओ।
अब तोरा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ भारी भरकम नियम या पाबंदियों की छवि बनती है। लोग अक्सर इसे एक सख्त कानून की तरह देखते हैं जो हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना है।
हाँ, और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। डॉक्टर ऑसवाल्ड स्पष्ट करते हैं कि तोरा का असली मतलब सिर्फ कानून या रोक टोक नहीं है, इसका मूल अर्थ निर्देश है।
मतलब एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल।
बिल्कुल, इसे जीवन जीने के एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर ऑसवाल्ड एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि मोक्ष या उद्धार कोई एक स्थिर अवस्था या चेक पॉइंट नहीं है जहां पहुंचकर इंसान रुक जाए। यह एक यात्रा है, एक चलने की प्रक्रिया है, ताकि हम वापस उस सांचे में ढल सकें जिसके लिए हमें मूल रूप से बनाया गया था।
यानी वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। अगर हम उसी उदाहरण पर टिके रहें, तो तोरा वो मैनुअल है जो मजदूरों को बताता है कि ईंटें कैसे रखनी है।
सटीक तुलना है, और इसी ब्लूप्रिंट को जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें हिब्रू के एक और बेहद महत्वपूर्ण शब्द को समझना होगा। वो शब्द है मिशपत। इसका अक्सर न्याय या जजमेंट के रूप में अनुवाद किया जाता है।
मैं आपको यहां रोकता हूं, क्योंकि जब हम न्याय या जज शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में काले कोट और सफेद विग में बैठा कोई व्यक्ति आता है जो हथौड़ा पीट रहा हो और किसी को सजा सुना रहा हो, मतलब एक अदालत का दृश्य।
हाँ, और यही कारण है कि हम अक्सर इन प्राचीन ग्रंथों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। हिब्रू मूल में, जो कि शफत व्यंजनों से बना है, इसका अर्थ दंड देने से कई आगे जाता है। प्राचीन इसराइल में एक जज का मतलब सिर्फ वो नहीं था जो दो लोगों के बीच झगड़ा सुलझाए।
तो फिर असली काम क्या था उनका?
जज वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की व्यवस्था या ऑर्डर को फिर से स्थापित करता था। तो मिशपत का मतलब सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, इसका मतलब है वो कस्टम या ब्लूप्रिंट जिसके तहत दुनिया को सही ढंग से काम करना चाहिए। जब इन ग्रंथों में कहा जाता है कि ईश्वर न्याय करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सजा बांटने आ रहा है।
अच्छा, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि वो इस अस्त व्यस्त टेढ़ी मेढ़ी दुनिया को वापस उस ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के अनुसार व्यवस्थित करेगा।
अरे वाह, ये नजरिया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका मतलब ये सजा के बारे में नहीं बल्कि बहाली के बारे में है।
बिल्कुल,
ये ऐसा है जैसे कोई मास्टर आर्किटेक्ट आखिरकार उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया है, मजदूरों को रोक रहा है और कह रहा है कि रुको, ये दीवार ऐसे नहीं बनेगी, इसे गिराओ और नक्शे के हिसाब से सही जगह बनाओ। ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि निर्माण है।
बेहतरीन व्याख्या है, लेकिन यहाँ डॉक्टर ऑसवाल्ट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर वो ब्लूप्रिंट इतना अच्छा था, अगर इंस्ट्रक्शन मैनुअल इतना स्पष्ट था, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर इतनी अराजकता आई कहां से?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
अध्याय दो के आगे के हिस्से में हमें इसका जवाब मिलता है। समस्या ये है कि इंसान ने उस ईश्वरीय ब्लूप्रिंट को दरकिनार कर दिया है और उसकी जगह अपने खुद के अहंकार को बैठा दिया है।
श्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि समाज कुछ चीजों से भरा हुआ है। आम तौर पर भरा होना एक सकारात्मक बात लगती है ना, लेकिन यहाँ ये एक चेतावनी है। लोग अंधविश्वासों से भरे हुए हैं, सोने चांदी से भरे हुए हैं, घोड़ों और रथों से, जो कि उस जमाने के मेन बैटल टैंक हुआ करते थे, और मूर्तियों से भरे हुए हैं।
ये सूची बहुत सोच समझ कर दी गई है। जादू टोना, अपार धन, सैन्य शक्ति और मूर्तियां। पहली नजर में ये अलग अलग चीजें लग सकती हैं, लेकिन इन सब में एक चीज समान है।
वो क्या?
यह सब इंसान द्वारा खुद को सुरक्षित करने, ब्रह्मांड पर नियंत्रण पाने और ईश्वरीय व्यवस्था के बिना खुद को ऊंचा उठाने के तरीके हैं।
लेकिन यहाँ मैं एक तर्क देना चाहूंगा। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें, तो पैसे और सैन्य ताकत से खुद को सुरक्षित करना तो इंसान फितरत है ना। अगर कोई देश अपनी सेना मजबूत कर रहा है ताकि कोई उस पर हमला न कर सके, या अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? इसे इतनी बड़ी नैतिक समस्या क्यों माना गया?
यह बहुत ही तार्किक सवाल है। इस पर डॉक्टर ऑसवाल्ट बहुत गहराई से विचार करते हैं। इसे समझने के लिए हमें आज की राजनीति को किनारे रखकर प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान की मानसिकता में जाना होगा।
अच्छा, तो प्राचीन लोग दुनिया को कैसे देखते थे?
उस समय के लोग मानते थे कि दुनिया तीन अलग अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़े हुए क्षेत्रों में बटी है। इंसानी दुनिया, प्राकृतिक दुनिया और ईश्वरीय या अलौकिक दुनिया।
मतलब उनके लिए कुछ भी अलग थलग नहीं था, सब कुछ एक ही नेटवर्क का हिस्सा था।
बिल्कुल, इसे एक प्राचीन इंटरनेट नेटवर्क की तरह समझें। उनका मानना था कि अगर धरती का राउटर खराब हुआ, तो आसमान का सर्वर भी काम करना बंद कर देगा, और इसके विपरीत भी।
दिलचस्प है।
तो मान लीजिए कि भयंकर सूखा पड़ा है और बारिश नहीं हो रही है। आज हम मौसम विज्ञान की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए इसका मतलब था कि आसमान के देवता और धरती की देवी के बीच संबंध ठीक नहीं है। तो वो क्या करते थे? वे इसे फिक्स करने के लिए मंदिर की वैश्यावृत्ति जैसे अनुष्ठानों का सहारा लेते थे। उनका विश्वास था कि अगर वे यहाँ धरती पर यौन अनुष्ठान करेंगे, तो देवता भी वैसा ही करेंगे, उर्वरता बढ़ेगी और बारिश होगी। वे इन मूर्तियों और अनुष्ठानों को लेकर इतने जुनूनी थे कि उन्हें एकदम शुद्ध रखते थे, ताकि कोई अशुद्ध शक्ति उनके इस सिस्टम में रुकावट न डाले।
अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह से ब्रह्मांड को हैक करने या ईश्वर को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो गई। वो कह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे देवताओं को वो करना पड़ेगा।
ठीक कहा। धन, रथ और मूर्तियां, ये सब सिर्फ बचाव के साधन नहीं थे। ये ऐलान थे कि इंसान को किसी ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं है, वो खुद सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ट बताते हैं कि इस अहंकार का अंत क्या होता है।
क्या होता है?
जब असली विपत्ति आती है, जब कोई भयानक भूकंप या आक्रमण होता है, तो वही लोग अपनी बेशकीमती सोने चांदी की मूर्तियों को, जिन्हें वे इतनी सावधानी से शुद्ध रखते थे, ले जाकर चमगादड़ और छछूंदरों के आगे फेंक देते हैं।
और श्रुत विशेष रूप से ये बताता है कि चमगादड़ और छछूंदर प्राचीन काल में अशुद्ध जानवर माने जाते थे। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिन मूर्तियों को वे अशुद्धता से बचाते थे, हताशा में उन्होंने उन्हीं को सबसे अशुद्ध जानवरों के आगे फेंक दिया।
ये उनकी चरम निराशा और पूर्ण विफलता का प्रतीक है। जिन चीजों से वे खुद को बचाना चाहते थे, जिन्हें उन्होंने भगवान बना लिया था, संकट के समय वे उनके लिए कूड़े के समान हो गई। अगर हम इसे आधुनिक दर्शन से जोड़ें तो डॉक्टर ऑसवाल्ट यहाँ अस्तित्ववाद और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं,
जहाँ कोई परम सत्य नहीं होता।
हाँ, जब इंसान खुद को हर चीज का पैमाना मान लेता है, ये मान लेता है कि कोई परम सत्य या ब्लूप्रिंट नहीं है, हम अपना सत्य खुद बनाएंगे, तो शुरुआत में ये बहुत आजाद करने वाला लगता है, लेकिन अंततः ये एक भयंकर मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है,
क्योंकि इंसान बहुत कमजोर है, हम अस्थाई हैं, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते।
बिल्कुल, डॉक्टर ऑसवाल्ट कहते हैं कि उन इंसानों पर भरोसा करना छोड़ो जिनकी नाक में सिर्फ एक सांस है। अगर कोई चीज सिर्फ एक सांस के भरोसे टिक कर जिंदा है, तो हम पूरे ब्रह्मांड का अर्थ उस पर कैसे टिका सकते हैं? जब हम ऐसा करते हैं तो अंततः हमारे हाथ सिर्फ अर्थहीनता ही लगती है। इंसान अपनी ही बनाई हुई इस खोखली दुनिया का भार नहीं उठा सकता।
और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जो हमें अध्याय 3 की तरफ ले जाता है। जब इंसान का पैसा, उसकी सैन्य ताकत और उसकी बनाई व्यवस्थाएं उसे इस अर्थहीनता से नहीं बचा पाती, जब वो देखता है कि उसके सारे नियंत्रण के उपाय फेल हो गए हैं, तो वो घबरा जाता है और इस हताशा में वो इंसानी नेताओं की ओर भागता है।
और ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। जब हर चीज फेल हो जाती है तो समाज एक ऐसे चमत्कारिक नेता की तलाश करने लगता है जो रातों रात सब कुछ ठीक कर दे।
लेकिन मैं यहाँ फिर से थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। क्या संकट के समय किसी नेता की ओर देखना एक स्वाभाविक और तार्किक प्रतिक्रिया नहीं है? अगर सिस्टम फेल हो रहा है, अगर अराजकता फैली है, तो किसी को तो चार्ज लेना पड़ेगा ना। लोग नेतृत्व ही तो मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है?
नेतृत्व मांगना गलत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ट जिस चीज की ओर इशारा कर रही हैं, और मेरा मतलब है कर रहे हैं, वो व्यवहारिक नेतृत्व नहीं है, वो मूर्ति पूजा का एक नया रूप है।
नेताओं की मूर्ति पूजा?
हाँ, जब हम इंसानी नेताओं को, चाहे वो राजनीतिक हों या धार्मिक, इतना ऊंचा उठा देते हैं कि हम उनसे बुनियादी मानवीय समस्याओं को सुलझाने की उम्मीद करने लगते हैं, तो हम असल में उन्हें भगवान की जगह बिठा रहे होते हैं। कोई भी इंसान हमें अर्थहीनता या नैतिक पतन से नहीं बचा सकता। जब हम उनसे वो उम्मीद करते हैं जो केवल ईश्वरीय व्यवस्था कर सकती है, तो हम उन्हें विफलता की ओर धकेल रहे होते हैं।
समझ गया। ये एक व्यवहारिक प्रबंधक ढूंढने के बजाय एक मसीहा ढूंढने की कोशिश है, और स्रोत में एक बहुत ही डरावना दृश्य है कि जब समाज ऐसा करता है तो परमेश्वर उस समाज से हर तरह के योग्य नेताओं को हटा देते हैं। न्यायाधीश, भविष्यद्वक्ता, सेनापति, यहां तक के कुशल कारीगर भी गायब हो जाते हैं, और फिर बच्चे उन पर राज करने लगते हैं।
हाँ, हालात इतने खराब हो जाते हैं कि समाज पूरी तरह से टूट जाता है। लोग एक ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जिसके पास बस एक साबुत कोट है, और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास कम से कम पहनने के लिए एक कोट तो है, तुम हमारे नेता बन जाओ और इन खंडरों पर राज करो।
यह हास्यास्पद भी है और बहुत दुखद भी।
बिल्कुल, एक कोट सभ्यता का एक छोटा सा टुकड़ा है। जब समाज पूरी तरह तबाह हो जाता है तो लोग उस छोटे से टुकड़े को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। ये दिखाता है कि जब हम ईश्वरीय व्यवस्था या मिशपत को छोड़ देते हैं तो समाज किस हद तक गिर सकता है। योग्यता और चरित्र का कोई मोल नहीं रह जाता, केवल बाहरी दिखावा नेतृत्व का पैमाना बन जाता है।
ये तो ऐसा है जैसे हम किसी आम इंसान को सुपर हीरो का सूट पहना दें, उसे एक ऊंची इमारत से धक्का दे दें, और फिर जब वो आसमान में उड़ ना पाए और नीचे गिर जाए तो उसी पर गुस्सा करने लगें कि तुम उड़े क्यों नहीं। हमने ही उन्हें ऐसी जगह बैठाया जहां से उनका गिरना तय था, और फिर हम शिकायत करते हैं कि सारे नेता भ्रष्ट हैं या नाकाम हैं।
ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि स्रोत में चुनाव के साल और अमेरिका के राजनीतिक प्रतीकों जैसे हाथियों या गधों का जिक्र होने के बावजूद डॉक्टर ऑसवाल्ट इसे किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं मानते।
हाँ, स्रोत इस मामले में बहुत निष्पक्ष है।
ये मानव स्वभाव है, हम वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, हम अक्सर नेताओं से ईश्वरीय उम्मीदें लगा बैठते हैं। ये किसी विचारधारा की समस्या नहीं है, ये मानवीय अहंकार की समस्या है।
और जब ये सब विफल होता है तो भविष्यद्वक्ता यशाया एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हाय, या अंग्रेजी में वो।
हाँ, और यहाँ अनुवाद की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। हिब्रू में ये शब्द ओए है। हम अक्सर इस शब्द को गुस्से या श्राप के रूप में देखते हैं, जैसे कोई क्रोध में कह रहा हो कि तुम पर सर्वनाश आए। लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ड स्पष्ट करते हैं कि ये गुस्से का नहीं बल्कि शोक या अफसोस का शब्द है।
जैसे जनाजे में या किसी भारी नुकसान के बाद गहरा अफसोस जताया जाता है।
बिल्कुल, ये दुख की अभिव्यक्ति है। यशाया रोते हुए कह रहे हैं कि अफसोस, तुमने अपने ऊपर खुद ये विपत्ति बुला ली है। ये ब्रह्मांड का एक साधारण सा नियम है, आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं।
मतलब कोई बाहर से सजा नहीं दे रहा।
नहीं, आधुनिक समाज अक्सर सोचता है कि वो जीवन के नियम खुद लिख सकता है, लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ड कहते हैं कि अगर आप अविश्वास और अहंकार बोएंगे तो आप अंततः अराजकता ही काटेंगे। ईश्वर सजा नहीं दे रहा, वो सिर्फ उन नियमों को काम करने दे रहा है जिन्हें आपने खुद चुना है।
तो जरा इस तस्वीर को देखिए, व्यवस्था फेल हो गई है, पैसा और सेना काम नहीं आए, जिन नेताओं को हमने मसीहा माना था वो नाकाम हो गए, और समाज अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। जब इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं बचती और अंदर भयानक खोखलापन होता है तो वो क्या करता है?
क्या करता है?
स्रोत के अनुसार वे अपने अंदर की शून्यता को बाहरी दिखावे से छिपाने की कोशिश करते हैं। अध्याय 3 का आखिरी हिस्सा इसी सामान और दिखावे के बारे में है।
हाँ, यहीं पर सियोन की बेकियों का जिक्र आता है, और डॉक्टर ऑसवाल्ड यहाँ एक बहुत ही अनूठा दृष्टिकोण सामने रखते हैं। ज्यादातर लोग इसे पढ़कर सोचते हैं कि ये सिर्फ उस समय की महिलाओं के सजने संवरने के घमंड पर एक टिप्पणी है, लेकिन ऑसवाल्ड का मानना है कि यहाँ सियोन की बेटी एक वचन है और यह एक रूपक है।
तो ये महिलाओं के बारे में नहीं है?
नहीं, ये केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे देश का, पूरे समाज के अहंकार का प्रतीक है।
ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है, क्योंकि उसके बाद जो चीजों की लंबी सूची आती है वो सच में अजीबोगरीब है। पायल, कंगन, परफ्यूम, आईने, तरह तरह के कपड़े, ये पूरी तरह से एक ओवरकिल है। इतनी चीजें कोई सामान्य रूप से नहीं पहनता।
यह सूची जानबूझकर इतनी लंबी और थकाऊ रखी गई है ताकि श्रोता को उस अति का एहसास हो। ये सब क्या है? डॉक्टर ऑसवाल्ड समझाते हैं कि यह सब कुछ छिपने की जगह है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हमारे जीवन के बुनियादी मूल्य ढह जाते हैं तो हम नियंत्रण का एक भ्रम पैदा करने के लिए भौतिक चीजों का सहारा लेते हैं।
हाँ, शॉपिंग थेरेपी।
बिल्कुल, जब आप अंदर से डरे हुए होते हैं तो कोई नई महंगी चीज खरीदने से आपको कुछ पल के लिए लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। जब अंदर अर्थहीनता होती है तो हम खुद को बाहरी आभूषणों से लाद लेते हैं ताकि दुनिया और हम खुद भी उस शून्यता को न देख सकें।
मुझे लगता है कि ये हिस्सा आधुनिक समाज के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। डॉक्टर ऑसवाल्ड इसे स्टोरेज यूनिट वाले उदाहरण से जोड़ते हैं। आज के हमारे समाज को देखिए, हम सामान खरीदते जाते हैं, हमारे बेसमेंट भरे हुए हैं, हमारे गैरेज में गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है क्योंकि वहां डब्बे भरे हैं, हमारी अटारी फुल है।
हाँ, और फिर क्या होता है?
और जब घर में जगह कम पड़ जाती है तो हम अपना फालतू सामान रखने के लिए अलग से स्टोरेज यूनिट किराए पर लेते हैं। मतलब हम असल में क्या कर रहे हैं? हम इन बेजान चीजों से अपने जीवन को अर्थ और सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसका परिणाम क्या होता है? श्रोत बहुत ही कठोर शब्दों में बताता है कि इस अंधी दौड़ का अंत भयंकर है। जहां खुशबू होनी चाहिए थी वहां बदबू है, जहां सुंदरता होनी चाहिए थी वहां गंजापन और राख है। और आखिरकार अध्याय 4 की शुरुआत में, जो कि मूल रूप से अध्याय 3 का ही हिस्सा है, एक बेहद परेशान करने वाला दृश्य आता है,
वो 7 औरतों वाला दृश्य।
हाँ, समाज इतना तबाह हो चुका है कि 7 औरतें एक आदमी को सिर्फ इसलिए पकड़ती हैं ताकि उन्हें उसका नाम मिल सके और उनका सामाजिक अपमान दूर हो सके।
वे कहती हैं कि हम अपना खाना खुद खाएंगे, अपने कपड़े खुद पहनेंगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपना नाम दे दो ताकि हमारा कलंक मिट सके। ये पूर्ण शून्यता और हताशा का चित्र है। जो समाज बाहर से इतना भरा हुआ और समृद्ध दिख रहा था, वो असल में अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है।
और यहीं पर बाइबल का एक बहुत बड़ा और सार्वभौमिक विरोधाभास सामने आता है। डॉक्टर ऑसवाल्ड ल्यूक के हवाले से कहते हैं, जो खुद को ऊंचा उठाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो खुद को नम्र करेगा वो ऊंचा किया जाएगा।
ये बात तो सच में सोचने वाली है।
हाँ, जब हम अपनी ताकत, अपने सामान या अपने बनाए नेताओं के बल पर खुद को ईश्वरीय व्यवस्था से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो हम निश्चित रूप से गिरते हैं। सच्ची सुरक्षा अहंकार में नहीं बल्कि उस मूल ब्लूप्रिंट के सामने खुद को नम्र करने में है।
तो इस विस्तृत चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सार यही है कि जब भी मनुष्य अपनी ताकत, सामान या अपने द्वारा गढ़े गए नेताओं के बल पर खुद को हर चीज का पैमाना बनाने की कोशिश करता है, तो उसे अंततः शून्यता और अर्थहीनता ही मिलती है। जीवन का अर्थ और सुरक्षा चीजों को इकट्ठा करने या किसी इंसान को आदर्श मान लेने में नहीं है।
यह बिल्कुल सही निष्कर्ष है। जब जब हमने अपनी समझ से वो ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश की है, हमने सिर्फ खंडहर ही खड़े किए हैं। अर्थहीनता से बचने का एकमात्र तरीका उस परम सत्य और व्यवस्था को स्वीकार करना है।
और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ना चाहते हैं। हमने शुरुआत में उस मिशपत यानी ईश्वरीय ब्लूप्रिंट या प्राकृतिक व्यवस्था की बात की थी। जरा कल्पना कीजिए कि यह प्राकृतिक दुनिया में कैसे काम करता है। एक जंगल को ही ले लीजिए।
जंगल का इकोसिस्टम।
हाँ, एक जंगल तभी फलता फूलता है जब उसका हर एक हिस्सा, पेड़, जानवर, कीड़े, मिट्टी, अपनी निर्धारित भूमिका निभाता है। जंगल तब तबाह हो जाता है जब कोई एक पेड़ या प्रजाति पूरे जंगल पर हावी होने की कोशिश करती है।
ये बहुत ही खूबसूरत विचार है।
तो सोचने वाली बात यह है, अगर हम अपने आधुनिक समाज में खुद को जीवन का आर्किटेक्ट मानना छोड़ दें, अगर हम अपनी दौलत, ताकत और नेताओं को भगवान बनाना छोड़कर उस पहले से मौजूद नैतिक पारिस्थितिकी या उस ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, तो हमारी दुनिया, हमारी राजनीति और हमारी मानसिक शांति कैसे दिखेगी? क्या हम उस कंस्ट्रक्शन साइट की अराजकता को आखिरकार एक खूबसूरत इमारत में बदल पाएंगे? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।